آج کل
श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच टकराव के बारे में चर्चा करेंगे।
यूरोपीय संघ कुछ यूरोपीय देशों का ऐसा संघ है जिसका लक्ष्य आर्थिक, वित्तीय, सीमावर्ती, विदेश नीति और सुरक्षा जैसी नीतियों के बारे में परस्पर समन्वय बनाते हुए इस संघ को आगे बढ़ाना है। इसके 28 सदस्य देश हैं, किंतु मार्च 2019 में ब्रिटेन के इससे निकल जाने से इस संघ के सदस्यों की संख्या अब 27 रह जाएगी। यूरोपीय संघ की जनसंख्या लगभग 551 मिलियन है। सन 2017 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 17.2 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक था। विश्व की अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की भागीदारी लगभग 27.8% है। इसके कई देश नेटो के सदस्य भी हैं। यूरोपीय संघ को हालिया वर्षों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों से मुकाबले के बारे में क्या नीतियां अपनाई जाएं, इसको लेकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए, जो आज भी जारी हैं।
इटली में जब से एक दक्षिणपंथी सरकार अस्तित्व में आई है, दक्षिणपंथी दलों के नेताओं ने विभिन्न अवसरों पर फ्रांस सहित यूरोपीय संघ के कई देशों के बारे में अलग प्रकार की नीतियां अपनाई हैं। इन दक्षिणपंथी नेताओं ने यूरोप में मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता पर बल दिया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान फ्रांस में येलो जैकेट आंदोलन का विस्तृत विरोध और इटली के दक्षिणपंथी सरकार के अधिकारियों की ओर से इसके समर्थन के कारण यूरोप के इन दो बड़े देशों के संबंधों में तनाव पैदा हो गया है।
इसी संदर्भ में इटली की सरकार द्वारा येलो जैकेट आंदोलन के समर्थन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फ्रांस ने इटली से अपना राजदूत वापस बुला लिया। अपने राजदूत को वापस बुलाने के संदर्भ में फ्रांस के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इटली की ओर से फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस बयान में कहा गया है कि इटली की कार्रवाइयां परिस्थितियों को जटिल बना रही हैं और इनसे फ्रांस के बारे में इटली की नीयत का अंदाज़ा होता है।
कुछ समय पहले फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने पेरिस में मौजूद इटली के दूत को इसलिए विदेश मंत्रालय तलब किया था कि इटली के उप प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से फ्रांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इन दोनों यूरोपीय देशों के बीच तनाव उस घटना के बाद अधिक बढ़ गया जब इटली के उप प्रधानमंत्री ने येलो जैकेट आंदोलन के दो नेताओं से भेंटवार्ता की।
फाइव स्टार आंदोलन दल के प्रमुख ने कहा कि यूरोपीय संघ को चाहिए कि वो फ्रांस सहित हर उस देश पर प्रतिबंध लगाए जो अफ्रीका को गरीब बना रहे हैं और वहां के लोगों को पलायन के लिए विवश करते हैं। उन्होंने कहा कि अफ्रीकियों का स्थान अफ्रीका है, न कि मेडिटेरेनियन। सन 2019 की जनवरी के आरंभ में इटली के गृह मंत्री और दक्षिणपंथी दल के प्रमुख की ओर से फ्रांस के पूंजीवाद विरोधी आंदोलन के समर्थन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। मेटो साल्विनी के अनुसार यूरोपीय संघ के देश भ्रष्ट पारंपरिक दलों की गिरफ्त में हैं।
इटली की दक्षिणपंथी सरकार के अधिकारियों की ओर से ये मांग निश्चित रूप से यूरोपीय देशों की परस्पर समन्वय की नीति के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये यूरोपीय देशों के बीच समस्याओं के बढ़ने के अर्थ में है। यही कारण है कि फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री नथाले लोइसा ने इटली के अधिकारियों को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है कि उचित यह है कि आप अपने घर के बाहर झाड़ू दें। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये मांग की है कि इटली के अधिकारी यूरोपीय देशों की जनता को उनके कर्तव्य बताने के बजाय इटली की समस्याओं का समाधान करें और इस देश की जनता की मांगों पर ध्यान केंद्रित करें।
फ्रांस के एक अधिकारी रिचर्ड फेरांड ने अपने एक साक्षात्कार में अपने देश के बारे में इटली के कुछ अधिकारियों की बातों की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ की योग्यता इटली के अधिकारियों की अय्याशी से अधिक है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के लिए उत्पन्न चुनौतियों में से एक चुनौती यह है कि यूरोप में बहुत तेजी से राष्ट्रवाद उभर रहा है, जो अपने साथ अतिवाद भी लिए हुए है। इस विचारधारा के लोग और राजनैतिक दिवालियां कुछ वर्षों के दौरान कुछ यूरोपीय देशों की संसद तक पहुंच गए हैं। इस विषय ने बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया है। इस पर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया को इसलिए महत्व दिया जा रहा है क्योंकि जर्मनी यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवाद पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है और इस विध्वंसक सोच से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता करने का आह्वान किया है। मर्केल का कहना है कि जर्मनी सहित कुछ देशों में अतिवादी राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है।
वास्तविकता यह है कि यूरोपीय संघ की मूल नीति अर्थात यूरोपियों के बीच सहकारिता को सुदृढ़ करने के बजाय वहां पर अतिवादी राष्ट्रवाद और दूसरों के विरुद्ध घृणा की भावना में तेजी देखने में आ रही है। विशेष बात यह है कि हालिया कुछ वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ के कुछ देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों में अतिवादी दलों ने जोर पकड़ा है और उनकी स्थिति बेहतर हुई है। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मई 2019 के यूरोपीय संघ की संसद के चुनाव में एक तिहाई कुर्सियां अतिवादी दक्षिणपंथी दलों के हाथों लग सकती हैं।
यूरोपीय देशों में राजनीतिक मंच पर इस प्रकार के दलों की उपस्थिति से यूरोप में जहां अतिवादी विचारधारा को बल मिला है, वहीं पर इससे यूरोपीय संघ की परस्पर सहकारिता नीति भी प्रभावित हुई है।
यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारी ने बढ़ते अतिवादी राष्ट्रवाद के खतरे के प्रति चेतावनी दी है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख जॉन कोल यूनकर ने अपने एक संबोधन में यूरोप में दिन प्रतिदिन बढ़ते राष्ट्रवाद के खतरे के बारे में कहा है कि अतिवादी राष्ट्रवाद ने अब तक किसी समस्या का समाधान नहीं किया है, बल्कि इसके कारण कई नई समस्याएं सामने आई हैं। उनका मानना है कि यूरोप में पॉपुलिस्ट केवल दोषी की तलाश में हैं और वे ऐसे समाधान पेश कर रहे हैं जो यूरोपीय संघ की नीतियों के विरुद्ध हैं। यूनकर के अनुसार बहुत से यूरोपीय देशों में पॉपुलिस्ट दलों का स्वागत जनता द्वारा किया जा रहा है। आदिवादी राष्ट्रवादी दल जो नारे पेश कर रहे हैं, उनके भीतर यूरोपीय जनता में आकर्षण पाया जाता है।
यूरोप में अतिवादी राष्ट्रवाद की ओर झुकाव यूरोपीय संघ के कुछ समझौतों के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है, जैसे शेंगेन समझौता। दूसरी ओर ये प्रक्रिया और इसका प्रसार हिंसक झड़पों और हिंसक कार्रवाइयों का कारण बना है। इस विचारधारा के समर्थक पलायनकर्ताओं और मुसलमानों तथा उनके धार्मिक केंद्रों पर हमले करते रहते हैं। इस प्रकार की हिंसक कार्रवाइयाँ यूरोपीय सरकारों और वहां की जनता के लिए खतरे की घंटी हैं। अतः इस प्रक्रिया को फैलने से रोकने के लिए जितना जल्दी हो सके प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।
एक अन्य विषय जो यूरोपीय संघ के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, वो पुराने और नए यूरोपियों के बीच बढ़ती खाई है। पुराना यूरोप वास्तव में बड़े एवं मध्यम यूरोपीय देशों पर आधारित है जो यूरोप के पश्चिम में स्थित हैं। नया यूरोप केंद्रीय और पूर्वी यूरोपीय देशों पर आधारित है जो सन 2000 के बाद से यूरोपीय संघ के सदस्य बने हैं। वर्तमान समय में कुछ विषयों को लेकर नए और पुराने यूरोप में गंभीर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पलायनकर्ताओं का संकट, आर्थिक संकट और यूरोप में अमेरिका की भूमिका को लेकर परस्पर मतभेद आदि। इसके अतिरिक्त भी निर्धन तथा धनवान यूरोपीय देशों के बीच नाना प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं। यूरोप के धनवान देश अधिकतर यूरोप के पश्चिम और उत्तर में स्थित हैं, जबकि निर्धन देश यूरोप के पूर्व और दक्षिण में मौजूद हैं।
एक राजनीतिक टीकाकार सिगत अफकही के अनुसार अमेरिका नए और पुराने यूरोप के बीच एक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। पुराने यूरोप से अमेरिका का तात्पर्य ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन है, जबकि नए यूरोप से उसका तात्पर्य पूर्वी यूरोप के देश हैं। वे कहते हैं कि ये अमेरिका के हित में होगा कि वो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के छोटे देशों तथा रूस के साथ इन देशों के बीच मतभेद पैदा करके मजबूत यूरोप के गठन को रोक सकें। इस प्रकार से अमेरिका यूरोप में सरलता से अपने हितों को साध सकता है।
जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े एवं मजबूत यूरोपीय देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरोपीय संघ में पाई जाने वाली संभावना के दृष्टिगत ये सोचना अनुचित है कि निर्धन और अमीर दोनों ही प्रकार के यूरोपीय देश एक साथ मिलकर यूरोपीय संघ के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। यही कारण है कि बड़े यूरोपीय देश ये चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के दृष्टिगत योजनाओं तथा परियोजनाओं में सारे ही यूरोपीय देश भाग न लें, बल्कि सशक्त देश ही इसमें हिस्सा लें।
जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय संघ के देश ये चाहते हैं कि सदस्य देशों की भागीदारी से ये संघ एक शक्तिशाली संघ के रूप में उभरे। ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व इस बात से लगभग अनजान था कि सन 2000 में बहुत सी शर्तों को अनदेखा करते हुए पूर्वी एवं केंद्रीय यूरोप के देशों को यूरोपीय संघ की सदस्यता प्रदान करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिनका समाधान शायद असंभव हो। जैसा कि हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ के सामने आने वाले संकटों के समाधान में उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के देशों के बीच गंभीर मतभेद पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, सन 2008 के आर्थिक संकट के बाद खर्चों में कटौती, आर्थिक पैकेज, शरणार्थी संकट और इस जैसे कई संकटों के संबंध में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के दृष्टिकोण में खुले मतभेद दिखाई देते हैं। इन मतभेदों में से एक मतभेद यह है कि यूरोपीय संघ की मूल नीति के विपरीत नया यूरोप यूरोपीय मामलों में अमेरिका के अधिक से अधिक व्यवहारिक हस्तक्षेप का पक्षधर है, जबकि यूरोपीय संघ चाहता है कि वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करे।